मंगल करण वीत राग विख्या नमो ताहि जाते भये अरहंता धीमा यो विद्यादि सागर सुधी यो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
बोलिए परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की।
हम लोग संसार की वास्तविकता का बार बार विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने बहुत बातों पर विचार किया, अलग अलग ढंग से विचार किया, लेकिन अब हम उस विचार की प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में लगातार करने का प्रयास शुरू कर रहे हैं। कल हमने उस विचार की प्रक्रिया को, जो विचार हमें निरंतर करना है, क्योंकि बहुत सारे विचार हम निरंतर नहीं कर सकते, पर किसी एक बात का विचार हम निरंतर कर सकते हैं। जैसे कि संसार में जो भी चीज़ें देखने में आती हैं, जो दिखाई पड़ती हैं, हमारी आंखें जिन्हें देख पाती हैं, वे सब चीज़ें निरंतर मिटती हुई दिखाई पड़ती हैं, और इस तरह हम उन चीज़ों की क्षणभंगुरता का विचार करते हैं, उन चीज़ों की अनित्यता का विचार करते हैं। और इतना ही नहीं, उन सब चीज़ों की अनित्यता के बावजूद भी उनके पीछे जो शाश्वत द्रव्य है, उसका भी विचार आना आवश्यक है। अकेले चीज़ें सब क्षणभंगुर हैं, इतना विचार कर लेना, ये आधा विचार है, अधूरा विचार है। कुछ है जो शाश्वत है, पर्याय या कि रूप निरंतर बदलते हैं, निरंतर नष्ट होते हैं, तो अनित्यता पर्याय की है, लेकिन जो उसके पीछे द्रव्य है वो शाश्वत है। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, प्राणों का संयोग होता है, फिर प्राणों का वियोग हो जाता, यह दिखाई पड़ने वाली चीज है, ये अनित्य दिखाई पड़ती है, लेकिन वो जो जीव है, जो जन्म लेता है और शरीर जिसका बाद में छूट जाता है, उसे हम मरण कहते हैं, पर वो जीव तो ज्यों का त्यों रहता है, वो शाश्वत है। तो क्या शाश्वत है और क्या शाश्वत नहीं है, इस बात का हमें बहुत स्पष्ट बोध होना चाहिए, तब कहलाएगा कि अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्यता का हमने बार बार विचार किया। हम लोगों के साथ जो हमारे संस्कार हैं, वो इस बात के हैं कि संसार में दिखने वाली चीजें तो शाश्वत हैं, हमें अपना शरीर भी शाश्वत मालूम पड़ता है, लेकिन इसके भीतर जो शाश्वत जीवात्मा बैठी हुई है, उसकी हम फिक्र नहीं करते हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा हमें इस बात की सलाह देती है। असल में अनुप्रेक्षा एक तरह की सलाहकार है, अगर हम देखें तो हमें सलाह देती है, आड़े समय में सलाह देती है, जब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं तब हमें सलाह देती है, या कि जब हम अज्ञान से ग्रसित हो जाते हैं तब वो हमें सलाह देती है, हमें ठीक ठीक दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देती है। तो अनित्य अनुप्रेक्षा हमें क्या सलाह देती है कि ये सब चीज़ें जो कि हमें दिखाई पड़ रही हैं, जब हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि मिटने वाली हैं, तो इनके पीछे क्यों नाहक अपन सुख और दुख का अनुभव करें, हम क्यों ना जो है इनके पीछे छुपे हुए उस आत्मद्रव्य की तरफ देखें जो कि शाश्वत है। और इन सब के पतित होने की उतनी चिंता ना करें, क्योंकि ये चीजें तो निरंतर पतित हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। हम अपने आत्मा को पतन से बचा लें। ये है अनित्य अनुप्रेक्षा। अकेले सुर ये पढ़ लेना कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो ठीक है अपनी अपनी बार मर जाना है तो मर जाना है, तो क्या करना, बात खत्म हो गई, मर जाना है इतना ही क्या? नहीं, मरना है इसके पहले मुझे कुछ कर लेना है जिससे कि मैं अपने उस शाश्वत जो कभी नहीं मरता उस शाश्वत आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लूं इससे पहले कि शरीर मरे। इस शरीर में रह करके ही मुझे उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, और ये शरीर तो छूट जाएगा, नया मिलेगा, फिर इस तरह बार बार प्रक्रिया चलेगी। तो नहीं, इसके पहले कि ये शरीर छूटे मुझे अपने उस आत्मद्रव्य को प्राप्त कर ले। ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। सामान्यतः व्यक्ति क्षणभंगुरता का विचार करके आगे बढ़ जाता है, सो ऐसे तो जिंदगी निकल गई, कौन नहीं जानता है कि चीजें क्षणभंगुर हैं, लेकिन उसके बीच में जो क्षणभंगुर के बीच में जो शाश्वत है, इस तरह से देखा जाए तो अनुप्रेक्षा हमें वस्तु के आर पार देखने में मदद करती है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा उसे देखने में मदद करती है, अदृश्य जगत को देखने में मदद करती है। ये दृश्य जो हमें दिखाई पड़ता है उस सब की वास्तविकता बताती है, और इसके पीछे जो अदृश्य छिपा हुआ है उसको भी हमें उजागर कर देती है। दोनों का अनुपेक्षा करती है और हमारे भीतर वैराग्य को उत्पन्न करती है, हमें सुख और दुख दोनों को झेलने की ताकत देती है। ऐसा नहीं है, अगर विचार की ये शक्ति हमारे भीतर डेवलप हो जाए, अगर हम विचारवान हो जाएं, ठीक दिशा में हम निरंतर विचार करने लगें, तो कितने लाभ होंगे। विपत्ति आएगी तो फौरन ये विचार हमारे भीतर क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, फौरन हमें सलाह देगा कि ठीक है विपत्ति तो आ गई है, तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसा विचार करो। विपत्ति के बीच एक व्यक्ति खुरे में बहुत स्वाध्याय करते थे, मेरे पास हमेशा आके बैठते थे, उनका बेटा नहीं रहा 25 साल का। मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगता है, महाराज स्वाध्याय का फल ये है कि मैं उस पर्याय की क्षणभंगुरता का विचार करूं, उसके पीछे जो शाश्वत द्रव था वो तो अभी भी है, और कहीं ना कहीं वो अपनी जैसी उसने कर्म किए होंगे वहां उसका वैसा फल भोग रहा होगा, मेरे पास नहीं है, मेरे से उसका वियोग हो गया, मेरे से जो 25 साल संयोग रहा उसमें मेरा क्या वश था, जब मेरा उस संयोग में बस नहीं था तो इस वियोग में मेरा क्या बस है, दुखी होने का कोई कारण ही नजर नहीं आता, बताइए। तब समझ में आया कि स्वाध्याय का कुछ फल मिला, और अगर हम भी जो है इतना सब समझते हुए और रोने धोने बैठ जावें, भैया बैठ जावें ये तो ठीक है सहज है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, संभव होता ही है, कोई भी जब अपने जीवन में संयोग वियोग होते हैं तो सुखी दुखी होता ही है, लेकिन उस सुख दुख के बीच में मैं कैसे जल्दी से अपने को संभाल लूं, बस क्षण भर को आएगा, दो क्षण को, एक दिन को, दो दिन को, 10 दिन को, भैया इससे ज्यादा कैसे, और इतना पर्याप्त है। अगर सुख दुख होता भी है तो सुबह हुआ शाम तक हम उसको सबसाइड कर दें और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें, उसमें आ जाएं। ऐसे सुख दुख दोनों के बीच हमें संबल देने वाली है अगर कोई, तो ये विचार की अनुप्रेक्षा की सामर्थ है। अनुप्रेक्षा इतनी हमें सामर्थ देती है कि हम सुख दुख को झेल सकें। कैसे, एक सेठ जी, घटना तो सब मेरे ख्याल से आप परिचित हैं, सुन चुके हैं अलग अलग ढंग से, बस मैं अलग ढंग से सुना देता हूं आपको, बाकी तो परिचित ही होंगे। ऐसी कई घटनाएं अपन ने इसी तरह की पढ़ी भी होंगी। क्या हुआ कि सेठ जी के यहाँ पर एक नौकर आया, तो वो छोटा ही सा था, पर उसको ये लगता था कि लोग सेठ जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। किस बात की प्रशंसा करते हैं, उनके पास इतना पैसा है इसलिए प्रशंसा करते हैं, या कि उनकी और भी कोई बातें हैं इसलिए प्रशंसा करते हैं। वो बार बार सोचता था इस चीज़ के बारे में और देखता भी रहता था कि सेठ जी के अंदर क्या विशेषता है, सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, और भी बहुत से सेठ हैं, हमने और भी सेठों के यहाँ पर काम किया है, लेकिन उनकी कोई विशेष प्रशंसा नहीं करता। उनको कोई कंजूस कहता था, उनको कोई स्वार्थी कहता था, उनको कोई कुछ कहता था हर एक, लेकिन इन सेठ जी को सब लोग प्रशंसा करते, कोई कभी नहीं कहता, बड़े दानी हैं, सब कुछ है, और भी क्या विशेषता हो सकती है। अब एक बार ऐसा हुआ कि सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार, उसमें बहुत सारा घाटा लग गया। घाटा लग गया तो अब उस लड़के के मन में आया कि अब तो सेठ जी जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आज तो देखेंगे अपन, आज तो वो जरूर दुखी मिलेंगे जब इतना घाटा हो गया। वो जाता उनके पास, देखता है कि वो तो बिल्कुल अपने काम में लगे हैं, पूजा पाठ है तो पूजा पाठ कर रहे हैं, और भी जो काम करना थे वो सब कर रहे हैं, जरा भी चेहरे पर शिकन नहीं है, जरा भी दुख नहीं है। हो सकता है शायद इनको खबर नहीं मालूम हो, खबर दे दी उसने कि इतना इतना घाटा हो गया। सेठ जी ने कहा ठीक है, अरे ठीक है ऐसा कह रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इसी वजह से सेठ जी की प्रशंसा करते हैं, ये बड़े शांत परिणामी है, इतने दुख के बीच भी ये जरा भी दुखी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तपस्या की बात है। कोई बात नहीं, इतने में भी उसे संतोष नहीं हुआ। 6 महीने साल भर बीता, वो घाटा वाटा तो पूरा हो गया, और इतना अधिक एक बार लाभ हुआ कि अब तो उसके मन में आया कि अब तो शांत और सीधे रह ही नहीं सकते, खुश तो हुए बिना रहेंगे नहीं, बहुत खुश होंगे, बहुत एक्साइट हो रहे होंगे कि इतना बेनिफिट हो गया, इतना लाभ हो गया, जाके देखना चाहिए। देखा तो वही पूजा पाठ में लगे थे, वही सबसे सहज रूप से बात कर रहे थे। जब इसने जाके कहा कि सेठ जी आपको मालूम है इतना लाभ हो गया, कहते हाँ मालूम है, जाओ अपना काम करो, ये तो सब लगा ही हुआ है, कभी घाटा होता है कभी लाभ हो जाता है, इसमें अपने को क्या इसमें हर्ष और विषाद करना, बहुत कठिन है। लाख बात की बात यह है, निश्चय और लाओ तोरी सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ। और एक ही पहले की 2 लाइनें नहीं बोली हमने, क्यों नहीं बोली वो आप विचार करो कि कहां कब, कौन सी है लाख बात की बात यह, कौन सी है लाख बात की बात ये, ऊपर वाली लाइन है कि पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये उपजती है बिनसती है, स्थिर है ही नहीं। पाप में हर्ष, पाप में दुख महसूस मत करो, और पुण्य के उदय में हर्षित मत हो, पाप और पुण्य दोनों का उदय हमें सुख दुख के लिए निमित्त बन सकता है, सुख और दुख, हमें सुखी और दुखी होना है कि नहीं होना ये हमारे ऊपर निर्भर है, जो जितना विचारवान होगा वो व्यक्ति अपने सुख दुख में समान रहने की साधना करेगा, इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है। आप चाहे कितने व्रत नियम संयम सबका पालन कर लो, लेकिन सुख दुख में अगर आप समान नहीं रहे, आपने जब प्रशंसा मिल रही थी तब तो फूले नहीं समा रहे थे, और अब किसी ने अगर एक बात कड़ी कह दी आपके मन की नहीं है, तो आप दुख में गिर गए हैं, तो अभी आप कच्चे हैं, अभी आपकी साधना कच्ची है, अभी थोड़े भले ही आप वर्षों से क्यों ना तपस्वी हों, लेकिन वर्षों की तपस्या भी इस बात पे निर्भर करती है कि जब सब कुछ आपके फेवर में है तब आप बिल्कुल अपने प्रसन्न हैं, और जब आपके फेवर में नहीं है कोई चीज तब फिर आप अगर दुखी होते हैं तो अभी कच्चापन है। अनुप्रेक्षा क्या सिखाती है, इस कच्चेपन को दूर कर देती, और कुछ नहीं। सब यहां कमजोर हैं इस मामले में, कौन है यहां पर, कितने ही पहुंचा हुआ भी क्यों ना हो, दुख के अवसर पर दुखी ना हो, अरे वाह, फिर भी हो सकता है कि दुख के अवसर पर दुखी ना हो, लेकिन सुख के अवसर पर सुखी ना हो, बहुत कठिन है, बहुत बिरले लोग होते हैं जो कि प्रशंसा में और गाफिल ना हो, बहुत मुश्किल है। निंदा को सहन कर लेंगे, जैसे तैसे करके सहन कर लेंगे, लेकिन प्रशंसा को सहन करना सबसे ज्यादा कठिन, मुझसे पूछो, अगर ईमानदारी से पूछते। हाँ, जय जयकार में मन फूले ना, ये कौन सिखाएगा, ये सिखाएगी अनुप्रेक्षा, निरंतर विचार की प्रक्रिया, कि अरे ये सब तो मिलता है, ये सब कदम कदम पर काहे का उदय है, पुण्य का उदय है इसलिए मिल रहा है, कल के दिन पाप का उदय आ जाएगा, तो जो आज प्रशंसा कर रहा है वही कल निंदा करते दिखाई पड़ेगा। सो न वो निंदा कर रहा था, न वो प्रशंसा कर रहा था, वो तो मेरे पुण्य और पाप में निमित्त बन रहा था और कुछ नहीं। उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, ना कहीं कोई उसकी प्रशंसा की बात है, वो तो सिर्फ मेरे अपने पुण्य। और ये कौन सिखाएगा? ये बात अनुप्रेक्षा सिखाती है। इसलिए भैया इतनी कीमती चीज है ये, क्योंकि संसार में इतना ही तो है। सुख और दुख का नाम ही संसार है। हर्ष और विषाद जहां निरंतर चलता रहे वही तो संसार है, और कोई अलग से संसार है क्या? जो हर्ष विषाद जितना कम करे वो संसार से उतना पार हो गया समझ। भगवान देखो, अपन जाके और खूब अच्छी पूजा करो, भक्ति करो, मनोवितन नहीं कहते कि वाह बहुत अच्छी हो तुम, ऐसा कुछ नहीं कहते। और कौन दिन अन्य जा पाओ तो जानी कहते आए ध्यान कहाँ थे तुम, आए नहीं थे, अब नहीं आओ तो हम देखें पर तुम्हें, ऐसा नहीं है। कभी कभी नहीं कहते, इतने सीधे साधे भगवान है ना। वो तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होकर वरदान नहीं देते, ना वो नाराज होकर श्राप देते हैं। इसलिए तो हम उनको भगवान मानते हैं, और भगवान बनने की हम इसलिए चेष्टा करते हैं। ये अनुप्रेक्षा हमें भगवान बनाने के लिए तैयारी करती है। ऐसी है ये अनुप्रेक्षा। आज अपन एक कदम आगे बढ़े, अब क्या विचार करना चाहिए? कल तो हमने निरंतर विचार किया, जो चीज हमारे हाथ में आई हमें फौरन विचार आ गया, अरे ये सब चीजें देखो तो अभी अभी ठीक लगती हैं, कल के दिन पुरानी हो जाएंगी, और पुरानी हो जाएंगी तो टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। कोई चीज 10 साल में खराब होती, कोई चीज 25 साल में खराब होती, कोई हो सकता मेरी जिंदगी भर खराब ना हो, मुझे हमेशा एक सी दिखाई पड़े। जैसे कि देवलोक हैं, देवलोक अपन कई कई जन्म ले लो लेकिन देवलोक अपन को मरते ही नहीं दिखाई पड़ते, तो उनका नाम अमर रख दिया कि भैया वो अमर हैं। अमर ममर थोड़ी हैं, उनकी भी आयु है, जब वो आयु पूरी कर लेते तो उनको ही मरना पड़ता है। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार और मरती विरिया जीव को न बचावन। कितनी भी आज्ञाकारी बेटा हो, आपकी आज्ञा से उठता हो, आपकी आज्ञा से खाता पीता हो, आपकी आज्ञा से सोता हो, लेकिन आपकी आज्ञा से मर नहीं सकता, न मरने से बच सकता है। आप ये कहो बेटे की मृत्यु आ जाए और उसने कहो कि तुमने जिंदगी भर हमसे पूछ के करो, अब हमसे पूछे बिना तुमने कैसे मृत्यु, मर कैसे रहे तुम हमसे बिना पूछे, मर नहीं सकते आप हमारी आज्ञा के बिना, ऐसा होता है? ऐसी चलती क्या हमारी आज्ञा? हम किसी की कितनी भी सेवा कर देवे, कितनी भी सेवा कर देवे, हम दवाई खिला देवे, डॉक्टर बुला के 25 खड़े कर देवे, लेकिन अपनी एक सांस दे सकते किसी को नहीं। आपके सिकंदर के साथ क्या हुआ था? वो कल्याण मुनि के संपर्क में रहे सिकंदर, हाँ उनको मुनि महाराज मिल गए थे 15वीं-16वीं शताब्दी में। कल्याण मुनि कभी पढ़िएगा इतिहास में, दिगंबर मुनि थे वो कल्याण मुनि। उनको वो अपने जहाज में बिठा के विदेश ले गए थे, पानी के जहाज में, हाँ उनकी जिद से लेके गए थे। मुनि महाराज जी को यान में बैठने का परिस्थिति बस जरूर है, लेकिन ऐसे बैठने का नियम वो है निषेध है, पर उनके लिए आता है कि वो ले गए अपने कल्याण के लिए सिकंदर, और उन्हीं के उपदेश से, और वो इतने प्रभावित हुए अनुप्रेक्षा से कि आखिरी समय उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। कि सिकंदर पूरी जिंदगी भर दुनिया को नष्ट करके और सम्राट बनने की चेष्टा में सब कुछ जोड़ता रहा, लेकिन आखिरी समय, और आखिरी समय कहते हैं कि लोगों से हकीम खड़े हैं, वैद्य खड़े हुए हैं, डॉक्टर खड़े हुए हैं, सब खड़े हैं, उनसे क्या कहता था सिकंदर, थोड़ी देर के लिए मेरी सांस चलती रहे जब तक कि मेरी मां आ रही है। मां को आना बाकी रह गया था, बाकी सब आ गए थे, घबराया बिल्कुल नहीं मरते समय सिकंदर, लेकिन बस एक ही चीज उसके भीतर था कि मां आ जाए। लेकिन आखिरी समय सिकंदर को कोई सांस नहीं देख सका, ये सिकंदर ने स्वयं फील किया आखिरी समय कि मेरी सब मदद करने खड़े हैं लेकिन सांस तो कोई नहीं दे सकता, ये लिमिट है। तो दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, हम सबकी शरण खोजें जब तक जिंदगी है, लेकिन मरण के समय, मरण के समय ये सब मेरे लिए शरण नहीं दे सकते। हम सोचते तो यही है कि ये हमें सुरक्षा देंगे, यहां संसार में धन संपत्ति और जितनी चीजें हम जोड़ते हैं, जरा विचार करना, काय के लिए जोड़ के रखते हैं? अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, और कुछ नहीं है। देख लो आप, अगर हमारा भविष्य सुरक्षित हो, दो रोटी को इंतजाम हो जाए, तो को जोड़ के न धरे सामान? बताओ आप, ने कोई परिवार बनावे अपनी सुरक्षा? हम किसी शहर में जाते हैं तो सबसे पहले का इंतजाम करत? को है होते अपनों के नैया, अपनों तो नहीं है, मनो भी है जो ना अपने मोहल्ला में रहते। वैसे उनके अपन से जान पहचान नहीं, मनो सुनी है कि उनकी रिश्तेदार हैं, तनक उनसे पता तो ले दूं। इतने भले ही उन रिश्ते, इतने भले ही उन उनसे कबो उन्हें अपन बोले होए, मगर उस नई जगह जा रहे हैं तो क्या घबराहट होती है? वहां कोई हमारा नहीं। इतनी असुरक्षा हम महसूस करते हैं यहां पर, इतने अशरण हैं हम यहां पर। ये जानते हैं कि यहां कोई शरण नहीं है, देखो तो, फिर भी यहां पर कोई शरण दे सकता है, इस फिकर में यहां से वहां शरण खोजते फिरते हैं। और ये अनुप्रेक्षा हमें सलाह दे रही है कि जब तुम स्वयं विचार कर रहे हो कि यहां कोई शरण नहीं है, जो तुम्हें शरण नहीं दे सकते उनकी शरण खोज रहे हो तुम? बताओ, जिनको खुद, जिनका भरोसा नहीं है मरने का, जिनका तय है उनके पास, जो व्यक्ति जन्म मरण से पार हो गया हो उसकी शरण खोजो फिर भी ठीक है, तुम उसकी शरण खोज रहे जिसको स्वयं एक दिन मर जाना है। बस ये अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है, हम शरण खोजें, कोई हर्जा नहीं है। यहां हम अशरण हो गए हैं इस बात को भी महसूस करें। इस संसार में दो चीजें महसूस करने की है कि यहां हम जहां जहां शरण खोजते हैं, क्या सच्ची में वहां पर शरण मिल सकती है? मेरे माता पिता, मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी धन संपत्ति, मेरे अपने परिजन लोग, मेरे अपने गुरुजन भी, बताइएगा क्या वो मेरे लिए सुरक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कोई मेरे लिए यहां सुरक्षा नहीं दे सकता, अन्यथा शरणम नास्ति, कोई यहां पर शरण नहीं है किसके अलावा? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, सिर्फ भगवान के अलावा, धर्म के अलावा और किसी की भी शरण नहीं है। अगर हम एक बार भगवान के पास ऐसे अशरण होकर के जाएं कि कहीं कोई मेरे लिए शरण नहीं है, तो भगवान की शरण जरूर मिल जाएगी। लेकिन हम भगवान के सामने काहे के लिए जाते हैं? भगवान आपकी शरण तो है ही, मनोजा सब बनी रहे वे हमारी, दुकान अच्छी चलत रहे वे, घर के लोगों को हम कछु रोग शोक व्याधि न हुए, और ये समय तो भगवान बहुत तंगी में चल रहे, हम कछु तो करो उपाय, हमें तो आप ही की शरण है। देखो आप कितना मजा है अपन लोगों का, एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप ही की शरण है, दूसरी तरफ ये सब नहीं रहेंगे तो आप भी हमारे कछु काम के नहीं है, जाकर असल में ये सब हैं सो हम आपके पास आ रहे हैं। नहीं, उल्टा हिसाब है। जिस दिन ऐसा लगने लगे कि ये सब जितने भी हैं मेरे लिए शरण नहीं है इसलिए भगवान के साथ, तब फिर कहते कि तस्मात कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, उस समय हम कह सकेंगे कि भगवान है। लेकिन ऐसे हम अशरण होकर के कभी नहीं आए हैं ना, हम तो जगह जगह शरण खोजते हैं, और जहां हमें शरण पानी चाहिए थे, जहां खोजने की आवश्यकता नहीं है, जहां सिर्फ अपने को समर्पित करने से हमें शरण मिल जाएगी, वास्तव में वो शरणागत हम हो सकते हैं वहां पर, जहां पर कि जो इस संसार से पार हो गए हैं या संसार से पार होने के रास्ते पर चल रहे हैं या जो हमें संसार से पार होने का रास्ता बताते हैं, इस संसार में कहीं कोई शरण नहीं है इस बात की हमें फीलिंग होनी है। बस इतनी सी ही बात है अशरण अनुप्रेक्षा में, और तो कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं, कितनी दूर तक कोई जाता है, कमला चलत न पैण जाए मरघट तक परिवार, अपने अपने सुखों रोवे पिता पुत्र। जरा विचार करें, ये सब अनुभव की चीज है, जिसको हम जीवन साथी मानते हैं, जो जीवन भर हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलती है, चल सकती है, उसका भी, उसकी भी लिमिट है। कहां तक? कमला चलत न पैण, बस सीढ़ियां उतर करके, जब आपकी अर्थी अगर बाहर जा रही होगी तो सीढ़ी उतर के बाहर तक आ जाएगी, इससे इतना ही साथ था। बस देह के साथ अब कोई साथ नहीं है, चेतना के साथ था और चेतना जा चुकी है इसलिए वहीं तक गया और मरघट तक परिवार के लोग उस देह को मरघट तक रख के आ जाएंगे। उसके बाद की यात्रा तो कोई नहीं करवा सकता, उसके बाद की यात्रा तो हमारी अपनी है, उसके बाद तो कोई शरण नहीं हमारे। लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब लोग हमारे लिए शरण देंगे, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। इस विचार से क्या होगा, सब लोगों से मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप कल से इनके साथ रहना बंद कर दो सबके, हाँ ये नहीं सिखा रहा हूं, ना ये अनुप्रेक्षा सिखा रही। इन सबके साथ जिनके साथ मैं रह रहा हूं, जिनसे मैं सुरक्षा महसूस कर रहा हूं, उन सब से मुझे सुरक्षा तो है, लेकिन क्या ये सुरक्षा मेरी अंतिम सुरक्षा है क्या? नहीं, इस संसार के लिए तो ये मुझे सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी उस आगे की यात्रा के लिए मैंने कोई सुरक्षा कर रखी कि नहीं कर रखी, इतना ही बस। ये सब मुझे संसार में संभाले हुए हैं, मैं सबकी मदद से अपना जीवन जी रहा हूं, ये बिल्कुल थैंक्स, इन सबको धन्यवाद मत देने से चूकना मत, इन सबको धन्यवाद देना कि देखो इन सब से मेरा जीवन चल रहा है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, मुझे अब अपने जीवन में वास्तविक शरण भी खोज लेनी चाहिए। और वो वास्तविक शरण है मेरे लिए धर्म की शरण। ये सब मेरे लिए बहुत थोड़ी देर के लिए शरण देते हैं, ये वास्तविक शरण नहीं है। क्या करें, इनसे शिकायत भी नहीं कर सकते, शिकायत करना भी नहीं सिखा रहे हैं कि देखो शिकायत करने लगे कि हमको, हमें आज महाराज जी कह रहे थे कि को नहीं हम आओ, सब स्वार्थ के हो तुम, हो रहे जितते हो ये सोझा के नहीं कहीं न बच जे झगड़ा बेकार में, जी नहीं समझा रहे हम, ये कह रहे हैं कि वो कर क्या सकते, कौन किसके लिए क्या कर सकता है, वास्तविकता ये है। सब यहाँ आशरण है, वो भी उतने ही आशरण है जितने हम आशरण, जिनकी हमने शरण ली है वे भी हमारी शरण खोज रहे हैं और दुनिया में वे भी शरण खोज रहे हैं। उनको भी हम सलाह दें कि देखो ना तो हमारी शरण लो ना हम आपकी शरण लें, हम सब भगवान की शरण में हैं, हम सबको धर्म की शरण है भैया। ऐसा विचार करना चाहिए। मल्ली सागर जी महाराज मल्लप्पा जी थे पहले आचार्य श्री के पिताजी, उनके जीवन की घटना सुनाऊं आपको, कभी नहीं सुनाई मैंने, आज याद आ गई मुझे। हाँ, ये जो महावीर जो बड़े भाई हैं आचार्य श्री के, उनसे भी एक बड़े भाई थे, एक बहन भी थी, हाँ वो नहीं रही पहले इनके उत्पन्न होने से पहले, बा मुश्किल बचे थे। जब जाकर के एक वहां पर भट्टारक जी की गद्दी है, समाधि है, विद्यासागर भट्टारक का नाम, उनकी समाधि पर जाकर के और पंचकल्याणक की पूजा होती है और दीप जलाया वहां पर, ऐसे करके बड़ी श्रद्धा थी माँ की, बहुत धर्म ध्यान करती थी इनकी माँ। तब बहुत दुखी हुई जब इनकी 12 साल की इनसे बड़ी बहन, इनकी बेटी हुई मतलब है, वो नहीं रही 12 साल की होकर के, बेटा 20 साल का होकर के नहीं रहा, बड़ा महावीर से भी बड़ा, हाँ तो बहुत दुखी हुई। तब मल्लप्पा जी क्या कहते थे, अरे दुख तो तीर्थंकरों को सहना पड़ा, वियोग तो उनको तक सहना पड़ा, अंजनी को वियोग सहना पड़ा, ऐसा कहते थे। और हम और तुम्हारी क्या विसात है, हम सबको यहाँ पर किसी की शरण नहीं है, एकमात्र धर्म की शरण है, तुम दुखी मत हो, ऐसा समझाते थे। ये कौन समझा सकता है जिसने अपने जीवन में इस चीज को समझा है। तो भैया हम आपसे यही कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में ऐसे कितने अवसर आते हैं जब हम सहसा असहाय हो जाते हैं, उस समय कौन सहारा देगा हमारे लिए, उस समय हमें किसी और का सहारा नहीं खोजना चाहिए, धर्म हमारे हमेशा साथ है। ऐसा विचार आ जावे तो ये अनुप्रेक्षा का फल हमको मिल गया। बताइएगा रामचंद्र जी क्षायक सम्यक दृष्टि कमती थे क्या, हमारे सम्यक दर्शन का तो पत्यार नहीं है कि वास्तव में हुआ कि नहीं, व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, बस इतना ही कह सकते हम कि हमारी जो है श्रद्धा है भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, धर्म के प्रति, इतने ही सम्यक दर्शन है। लेकिन उनका तो तय था कि शायद सम्यक दृष्टि है और सीता जी को उठा करके ले गए रावण, तब दुखी हो रहे, किससे नहीं पूछा, कंकर कंकर से पूछा, वृक्षों से पूछा, मेरी सीता को देखा, ऐसे फिरे थे मोह से बेहल होकर, कहां कहां नहीं शरण खोजी है, किस किस से नहीं पूछा है। जब जटायु ने जाकर के और सारी खबर दी है, तब थोड़े से सचेत होकर के फिर आगे का उद्यम किया। लेकिन उसके पहले तो देखो, मोह किसको नहीं खेरता है, लेकिन इस मोह को कमती करने वाली ये अशरण अनुप्रेक्षा है और कुछ नहीं। हमारे मोह को कम कर देती, जब हमें मोह घेरता है, जब हम असहाय हो जाते हैं और वियोग जन्य दुख से ग्रसित हो जाते हैं, या संयोग में हम एक्साइट हो जाते, दोनों स्थितियों में, हाँ, संयोग और वियोग की सारी स्थितियां मोह जन्य हैं, ये सबको झेलना पड़ती हैं। उस स्थिति में हमको जो है और सहज रूप से जीने की सलाह या शरण अनुपेक्षा देती है। कोई तो नहीं बचा सका, रावण से कौन बचा सका, और जब रावण का मरण आया तब कोई रावण को बचा सका, किसको बचा सका, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को बचा सके रामचंद्र जी? बड़े बड़े महापुरुषों की बात अपन कर रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं अपन उसमें, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारे, कहां गए वह राम अनु लक्ष्मण जिन रावण, कहां कृष्ण रुक्मणी अरु सतभामा सम अरु संपति सगरी, नहीं रहे वे लोभी गौरव अरु सुवर्ण की नदी। सब जो है, सब यहां अनित्य भी है, और हम इस अनित्य में शरण खोजते हैं तो वहां शरण भी नहीं है। ना कोई मंत्र काम आता है, ना कोई विद्या काम आती है, ना हमारा दलबल काम आता है, सब खड़े रह जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई असहाय होता है तो उन क्षणों में असहाय होता है कि अपने सामने अपने ही व्यक्ति को मरण के निकट पाता है, तब उस समय हाथ बांधे खड़ा रहे हक्का वक्का, जो कि अपने को बहुत बड़ा मानता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं चंद्रमा पे पहुंच सकता हूं। पहुंच सकते हैं आप, सब कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है, लेकिन किसी मरते हुए को एक सांस देने की ताकत है किसी के पास? इतने तो अशरण है, इतने तो असहाय वास्तव में है। कभी फील करिएगा इस चीज को, फील किया भी होगा लोगों ने इस चीज को, कि कैसे हम तो देखते हैं उस समय, शायद इसीलिए छोटे बच्चों को मरघट नहीं ले जाते थे कि ये विरक्त हो जाएंगे, ये संसार की वास्तविकता ना समझ जाए, इनकी आंख ना खुल जाए, घर रहो तुम अबे छोटे हो, डर के अपन कहते कि डर जाएंगे, वो डर वन नहीं जाएंगे, आंख खुल जाएगी वास्तव में, अगर उस कच्ची उम्र में ये मालूम पड़ जाए तो फिर तो अपन पक्के हो जाए ठटेरे के वे कबूतर, ठक 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 की आवाज सुना सुनत फिर अपन कछुआ सर नहीं हो। पहली बार जब कबूतर उसकी दुकान पे बैठा था सुनार की, तो ठक की आवाज ही से उड़ गया वो, उसने कहा रही मामला गड़बड़ है, कुछ विपत्ति है। जब उसने देखा कि ये तो अपने काम में लगे ठक 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 करते ही रहते हैं, ऐसे जब अपने जीवन में अपन बहुत रिजिड हो जाते हैं, तब हमें इन चीजों का परिचय कराया जाता है, तब तक तो बात बहुत हो चुकी है और हम लोग समझ नहीं पाते। आज अपन को कितनी कितनी जानकारी है, लेकिन इन सभी जानकारी का असर क्यों नहीं होता? यही बात है कि हम रिजिड हो गए। हम अगर उस वास्तविकता को बचपन में समझने की कोशिश करते तो हम इतने मोह से ग्रसित ना होते। आज भी कोई बिगड़ा नहीं हमारा, आज भी अगर हम लगातार हैमरिंग, अनुप्रेक्षा हैमरिंग करती है, लगातार चोट पहुंचाती है, जैसे कि बहुत बड़ा गार्टर भी हो बहुत मजबूत, अगर लेकिन उस पर लगातार चोट की जाए तो वो भी टूट के गिर जाएगा। पुल के ऊपर से जब बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता पुल बनाते हैं, तब उस पर से पूरी मिलिट्री को लेफ्ट राइट करते हुए नहीं निकालते हैं, रिदिम तोड़ देते हैं उसकी, क्योंकि रिदिम अगर पूरे रिदिम में निकल गई तो इतनी एनर्जी क्रिएट होती कि वो पुल टूट सकता है, वो ये मानते हैं। इसी तरह जो है, हम अगर अपने भीतर एक लय पैदा कर ले, अगर एक विचारों की निरंतरता पैदा कर ले रहे और लगातार अपने उन खोटे संस्कारों पर हैमरिंग करें, हथौड़ा चलाएं, बिल्कुल विचार हथौड़े की तरह हमारे भीतर नहीं चुभते हैं, अगर ऐसा विचार निरंतर करें कि कौन शरण है, कौन शरण है, यहां पर यहां सब अनित्य है, मैं व्यर्थ ही शरण खोजता हूं, तो ये निरंतर चोट होगी हमारे भीतर और हमारी रिजिडनेस टूट जाएगी, हम समझने लगेंगे कि हाँ वास्तव में ये है। इस तरह हम अगर इस प्रक्रिया को शुरू करें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को और जरूर परिवर्तित कर पाएंगे। हमें करना कुछ नहीं है, हमें जिस तरह जी रहे हैं उसी में थोड़े से परिवर्तन करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अब जैसा जीवन हमको मिला है वो तो भोगने की मजबूरी है, लेकिन जैसा हम जी रहे हैं वैसा जीने की मजबूरी नहीं है। मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य की तरह तो जीना ही पड़ेगा, लेकिन मनुष्य की तरह भी हम दुख में ही जीते रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए हमने ये प्रक्रिया शुरू करी है कि हम अपने जीवन को एक अपनी मन चाही दिशा दे सकते, अपने विचारों की सामर्थ्य को बढ़ा करके। इसलिए इस प्रक्रिया को देखें हम बहुत गौर से कि हम जो चीज़ें यहाँ पर जिनकी हम शरण खोजते हैं क्या वो सचमुच में हमें कोई शरण दे सकती हैं नहीं दे सकती हैं, तो फिर उसको बचाओ ना जो कि बच सकता है, उसको छूट दे छूट जाने दो जो छूट जाता है। घर में आग लग गई थी और सेठ जी बाहर आके खड़े हैं कह रहे हैं बचाओ बचाओ, घर में आग लग गई तो लोग दौड़ते हैं सामान बचा बचा करके ला रहे हैं और घंटे भर हो जाता है। अचानक सेठ जी को याद आता है कि अरे वो छोटा बाबू कहाँ गया, बाबू कहाँ गया। तो बाबू कहाँ गया, छोटा बाबू वो तो पलंग पे ही लेटा हुआ, पालने में लेटा हुआ। अरे तो जल्दी जाओ, फिर सामान तो सब बाहर निकाल लिया और बाबू तो भीतर रह गया, वो जो दो तीन साल का था वो पल्ले में ही सोया हुआ है। जब तक उसको पल्ले में से बाहर निकाल के लाते हैं तब तक वो झुलस चुकता है, बाहर आने पर वो प्राण छोड़ देता है, सामान बच जाता है, सामान को भोगने वाला मर जाता है। इतनी सी बात है, मैं इस कहानी को इतना ही कहता हूं, इससे ज्यादा नहीं फैलाता हूं। फैला दो इस कहानी को चाहे जितने, हमारे सबकी कहानी है ये। वो तो ऐसी दिखने में आती है कि बाबू जिसके लिए 3 साल का बेटा, जिसके लिए पूरी संपत्ति जोड़ के रखी थी, आज भजन इतना प्यारा भजन सुनाया है जिसने सुनाया है, कितनी वास्तविकता कह दी कि पिता हमें बड़ा करते हैं, कमा कमा करके हमें अपनी संपत्ति का हकदार बनाते हैं। बताओ तो, ये बात एकदम ध्यान में नहीं आती थी, आज एकदम ध्यान में आ गई कि बात तो सही कह रहे हैं। कमा कमा कर रख रहे हैं और इतना छोटा सा बेटा जो कुछ नहीं लेके आया था अपने साथ में, उसके लिए इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बना के, और वो ही बेटा उनको घर से बाहर निकाल देता। ये है संसार की वास्तविकता, इसको ध्यान रखो, यहीं से ले लो ये उदाहरण कि ये है संसार और इसी संसार में मैं फिर भी मोह कर रहा हूं। अरे तब तो फिर मेरे से ज्यादा गैर बुद्धिमान कोई नहीं, मैं अपनी चेतना को बचाऊं, ये सब चीजें जो मरती हैं उनको मर जाने दूं, ये सब यहां पर आचरण है। बस इतनी सी बात अगर समझ में, देर सवेर जैसे भी आए भैया, जब समझ में आए आ जावे, जिसको जब समझ में आए, इतनी जल्दी नहीं है, आराम आराम से, कोई फर्क नहीं, पर आनी चाहिए, पर आनी। मेरा कहने का मतलब ये, हाँ अब ऐसा थोड़ी है कि एकदम हमने कहा और आपके समझ में आ गई और सब बन गए महाराज, ऐसे नहीं होता, हमें मालूम है एकदम, पता नहीं किसको कब पर आ जाए। अपने को कोशिश ये करनी कि सांस निकलने से पहले भी अपने समझ में अगर ये आ जाए कि सब आचरण है, तो सांस शांति से निकलेगी, हड़बड़ी में नहीं निकलेगी। आखिरी सांस के समय याद आ जाए कि कोई, बस एक सांस मेरी बाकी बची है, कोई मुझे एक सांस नहीं दे सकता, इसलिए सबके प्रति मेरे मन में अब कोई दुर्भावना नहीं है, ना कोई ममत्व है, अब मैं अपनी इस एक आखिरी सांस को भी संभाल लेता हूं तब भी मेरा जीवन सफल हो गया। बस इस तरह अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें, अच्छा बनाने का प्रयास करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते हम तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां दिन रात लुटाया करते वो शमशम की अविनश्वर मणियां के शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पद पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तमनास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो पर भास वेखो मानु शिव कानी है अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को कबुना सताए वे को भव्य और आनी है वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो ए जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रहें जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज मगम
ओम निपम पूजे स्वामीनाथ श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में ओम निपम पूजे स्वामीनाथ श्री भक्त सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत पद प्राप्त है अनंत रूप स्वामी जी स्वाहा माता की परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का चातुर्मास समिति स्वागत करती है आपके भोजन की